आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अर्पा रेडियो प्रस्तुत करता है एक विशेष परिचर्चा, जैव विविधता पर एक विशेष परिचर्चा। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर गरिमा तिवारी और श्री संजय प्यासी। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
नमस्कार, अर्पा रेडियो के इस कार्यक्रम में हम नेचर पर बात करेंगे, जीवन पर बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पर बात करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे पास दो विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गरिमा तिवारी हैं, आप सहायक प्राध्यापक वानिकी विभाग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हैं और साथ में संजय प्यासी जी हैं जो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं लगातार। अपने आप को ये जिज्ञासु कहते हैं, शोधार्थी कहते हैं, जंगल प्रेमी भी कहते हैं और साथ ही इनका एक आइडिया है स्कूल ऑफ नेचर का। तो हमारे साथ डॉक्टर गरिमा तिवारी हैं, वो स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में पढ़ाती हैं, समझाती हैं, उसको फील करने के तरीके बताती हैं और संजय जी हैं जो नेचर के साथ सीधे जोड़ने की बात कहते हैं, उनको उस जगह पर लाकर उनको महसूस कराने की बात करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रिया है और इस जुड़ी हुई प्रक्रिया के साथ हम ये बातचीत आरंभ करना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गरिमा आपसे जानना चाहूंगा कि एक सामान्य हमारा जो लिसनर है, चाहे गांव का हो, शहर का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को वो क्या समझे?
पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैव विविधता का अर्थ है कि जीवन में आपको जिस क्षेत्र में भी जितने प्रकार दिखते हैं, बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे घर में हम अक्सर सब्जी बनाने के लिए गरम मसाले का प्रयोग करते हैं। इसमें आप जितने तरह तरह के मसाले के अलग अलग प्रकार उपयोग करते हैं वो भी एक तरह से जैव विविधता को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे पौधे हों, जानवर हों, तितलियां हों, पंछी हों, हमारे आसपास जीवन के जितने रूप स्वरूप हैं, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े पेड़ तक, आपको जितने भी प्रकार दिखते हैं इससे ही जीवन की सुंदरता है और यही जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाती है।
जब हम इससे और साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, तो जैव विविधता तीन तरह की होती है, अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। तो हम इस पे बहुत डिटेल में ना जाए, बहुत सामान्य से शब्दों में कहें, जिंदगी के जो आप रंग बिरंगे स्वरूप देखते हैं वही जैव विविधता है। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में ये बताया गया है कि 46,000 से अधिक पौधे किए जाते हैं और 81,000 से अधिक जानवरों के किए जाते हैं। तो चाहे हमारे जंगल के आदिवासी हों, जनजातीय समुदाय हों, आपके घर के बाहर जो तरह तरह की घास लगी है, आपके बगीचे में जो रंग बिरंगे फूल हैं, आप बाहर निकलते हैं देखते हैं सुबह सवेरे अनेक अनेक तरह के पक्षी, ये सब जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही जैव विविधता है।
संजय जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इसमें लगभग सारी बात मैम ने कही है और जैव विविधता का मतलब हमारे आसपास जितने तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, घास की प्रजातियां होती हैं जिन्हें हम गैर जरूरी मान के खरपतवार समझकर खत्म कर देते हैं, वो भी इकोसिस्टम में किसी जीव जंतु के लिए आश्रय देने का काम या भोजन देने का काम करते हैं। तमाम चीजें जिनमें जीवन है, जिनमें विकास का क्रम होता है, ग्रोथ होती है, जो हरा भरा एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हर सीजन में चक्रण व्यवस्था को फॉलो करता है, वो तमाम चीजें जो दाल हम खाते हैं, जो जिस तरह के तिलहनों का हम तेल इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, या हम जितनी प्रकार की मछलियां खाते हैं, या छत्तीसगढ़ की बात करें 36 से ज्यादा किस्म की भाजियां होती, उन भाजियों की वैरायटी भी जैव विविधता के अंतर्गत आती। तो जैसा एक डाइवर्स कंट्री हम कल्चर की बात करते हैं कि हमारे देश में विविधता है, खान पान, रंग, भाषा, हर तरह की, उसी तरीके से अगर इस पूरी पृथ्वी को एक देश माना जाए, कोई एक जगह मानी जाए, तो इसमें जितने तरह के प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें जीवन होता है, और वो जीवन पानी के भीतर भी होता है, जमीन के अंदर भी होता है, जमीन के ऊपर भी होता है, ये तमाम तरह के जीव जंतु उस जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। जी,
प्रकृति की रंगत अब धीरे धीरे लोगों ने और बेहतर तरीके से समझना शुरू किया है। डॉक्टर गरिमा, आप जो कि पढ़ाती हैं बहुत सारे छात्रों से, लगातार आप संवाद में रहती है या समाज में आपकी भागीदारी अलग तरह से है इस विषय को लेकर के, तो लोगों की जागरूकता या लोगों का रुझान इस तरफ धीरे धीरे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसको आप किस नजरिए से देख पा रही
हैं? देखिए, रुझान की जहाँ तक बात है तो मैं बहुत थोड़े से कड़े शब्दों में कहना चाहूंगी कि अब भी हम अगर सिर्फ क्योंकि हमने जैव विविधता को लेकर अपनी बातचीत आज शुरू की है तो ये बहुत दुख की बात है कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो हमने अपने जैव विविधता का 25% तो हम खो चुके हैं। और बहुत से विविधता के ऐसे पहलू हैं, जीवन की ऐसी विविधता है जिससे कि आज भी मनुष्य प्रजाति अनजान है, और उसके बावजूद भी जिस तरह से अतिक्रमण फैल रहा है, जिस तरह से हमारे जंगलों को हमने काटा है, जिस तरह से हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है, ये सारी जो बातें हैं ये दुनिया में हम एक एक करके जीवों को जिस तरह से खत्म कर रहे हैं तो ये एक नए तरह के संकट में डालने की तैयारी है। संकट पे कौन आ रहे हैं? हम मनुष्य। तो मैं तो सीधे सीधे से मुझे ये महसूस होता है और मुझे लगता है कि संरक्षण के प्रयास पर अब ज्यादा बात होनी चाहिए बजाय हम इस पे चर्चा करें कि किस तरह से नुकसान हो रहा है या किन तथ्य क्या कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है। और छोटे छोटे स्टेप लें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये जो परिचर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है सुनील जी ये भी एक सकारात्मक प्रयास है कि हम समझते हैं ऐसी जरूरत को कि हमें और आगे आकर समाज में लोगों को जागरूक करना है, उन्हें समझाना है कि संभालना होगा और अपने जीवन के जो विविध स्वरूप है उन्हें बचाना होगा। क्योंकि ये जो तीन तथ्य जिसके बारे में घूम फिर करके बातें होती हैं, जैव विविधता, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन और तीसरी समस्या प्रदूषण, ये तीनों जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई, हम किसी एक समस्या का समाधान करने जाएं तो हमें दूसरी समस्या के बारे में चर्चा करनी ही होगी। अगर हम समग्र रूप से देखें तो धरती को बचाने के लिए आज बहुत अधिक जरूरत है जागरूकता की और उन छोटे छोटे प्रयासों की जिससे कि हम इस धरती को बचा सके।
जी, आपने एक बहुत जरूरी बात की है संरक्षण की। अमूमन ऐसे दिनों में या ऐसे उत्सव विशेष पर हम पेड़ लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक अटक कर रह जाती है। जो संरक्षण है, चाहे वो नदियों का हो, कीट पतंगों का हो, वो अप्रोच हमारी वहां तक नहीं पहुंचती। तो संजय जी, इसी कड़ी में आगे की बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संरक्षण की वो अप्रोच हम कैसे लाएं या किस तरीके से समाज में स्प्रेड हो।
जी, इस बात की शुरुआत मैं ऐसे करूंगा जैसा मैम ने कहा कि हम जब बात करते हैं हमें ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे पेड़ लगाओ की मुहिम बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि समाज में जागरूकता आई। जागरूकता नहीं आई है, एक ट्रेंड को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है कि पेड़ों के पक्ष में बात करना या किसी कैंपेन में या कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है उसका एक तरीके से प्रतीकात्मक विरोध करके ही लोग अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझ लेते हैं। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या की जड़ पे जाना बेहद जरूरी है। कोई प्रॉब्लम अगर वहां पर खड़ी हुई है तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के लिए जितने जरूरी डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेट में अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं कि रिस्टोरेशन कैसा हो, अगर हम बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं तो उनके कारणों को समझना चाहिए। तो मैं जब आपसे रेडियो पे चर्चा हुई तो एक बहुत सुंदर नाम आपने रखा है, रेडियो अर्पा। मुझे नदी बहुत पसंद है और नदी के इर्द गिर्द ही मेरी ज्यादातर सर्वे और स्टडी हुई है। तो जैसे अर्पा नदी है, ऐसी तमाम जो देश की नदियां हैं उन नदियों में जो बांध बने, उन बांधों के बनने से नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र था वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ और बहुत सी ऐसी मछलियों की या अन्य जलीय जीवों की प्रजातियां थी जो प्रजनन के लिए नदी की विपरीत दिशा में बहती थी और नदी की विपरीत दिशा में बहकर वो किसी खेत में, किसी नाले में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान में जो उनके हजारों सालों से इवोल्यूशन के बाद से उन्होंने अपना प्रजनन का तरीका या एक खास सुरक्षित हैबिटेट में ही वो अपने बच्चों को अपनी संतति को आगे बढ़ाती थी, उन जगहों पर जाना उन प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ एमपी की जो स्टेट फिश है महाशीर मछली है, बहुत बड़ी, मतलब 5-5, 6-6 फीट तक के भी उसके स्पेसिमेन मिले हुए, वो मछली बहुत तेजी से गायब हो गई। अरपा नदी में ही बहुत सारे जीव जंतु पहले के जमाने में, जब आप बात करेंगे जिन मछुआरों से, मैं अक्सर जब भी किसी नदी के किनारे जाता हूँ तो उनसे बात करता हूँ जो बुजुर्ग मछुआरे होते हैं, तो जब भी उनसे चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि पहले यहाँ पे महाशीर मिलती थी या कोई अन्य देशी नाम लेते थे मछलियों के, और अब जब मछली पकड़ने वाले लोगों से मैं बात करता हूँ तो वहाँ 2-3 हाइब्रिड मछलियां ही मिलती हैं जिनके बीज हर साल छोड़े जाते हैं। तो हमने जो विकास का पैमाना शुरू किया, जिसमें डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि आधुनिक तरीके से खेती हमने शुरू की, तो इस खेती में आप देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी नहीं, जो सब्जी आप अपने किचन में लगा रहे हैं, जो अनाज आप अपने खेतों में बो रहे हैं, एक तरीके से विज्ञान ने हमें इस तरीके से बाध्य कर दिया है कि हर साल हम उसका बीज खरीदें। तो हर साल जब हम बीज खरीदते हैं तो जिस प्रजाति का वो बीज होता है वो उस स्थानीय जलवायु को सहने की, उसमें सर्वाइव करने की क्षमता उसमें कम होती है, अनुवांशिक रूप से भी दूषित होते हैं। बहुत लंबे टर्म में अगर बात की जाए कि जिन प्रजातियों का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, लैब में हुआ है, वो हमेशा टेस्टिंग मोड में ही रहते हैं। कभी भी कोई लैब में बनी हुई चीज जो है वो परफेक्शन की तरफ नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश है। और जो पारंपरिक अनाज हम खाते रहे हैं वो तो हजारों सालों से हमारी परंपरा में शामिल रही, मतलब वो अपने सबसे उच्चतम उत्कृष्टतम रूप में मिलती। तो अगर हम अपनी स्थानीय जैव विविधता को जानते हैं तो हमें पता होता है कि इसके बीजों के लिए हमें अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। हर साल आपको याद होगा जब हम लोग अपने ननिहाल या गांव में जाया करते थे तो लौकी या तुरई या जो सब्जी होती है तो 4-5 हर बेल में छोड़ दी जाती है कि अगले साल उसी को बीज के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। और वो जो बीज होते थे उनकी सीजनिंग भी मौसम के साथ, मतलब हवा लगने से किसी चीज को ढक के रखा जाता था कुछ बीजों को, कुछ बीजों को धूप में सुखा कर रखा जाता था। यानी जो देसी तरीका था बीजों की सीजनिंग का, उनको प्रोटेक्ट करने का जो तरीका होना चाहिए, वो हमने कई हजार सालों से सीखा था पारंपरिक तरीके से। पर ये जो बीज आए हैं इनकी जो सीजनिंग है वो प्रॉपर हुई नहीं। लैब में कोई चीज आदर्श व्यवहार कर सकती है पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम अपने बिलासपुर की मिट्टी में अगर उसी लैब में बनी हुई बीज को हम अंकुरित करने के लिए छोड़ेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय कीड़े मकोड़े हैं उनसे वो कैसे बचेंगे, और जब वो नहीं बचते तो उसके लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल का एक नुकसान तो ये होता है कि वो कीड़ों से तो बचा देता है उस अनाज को या उस फसल को, लेकिन आसपास के जो जरूरी खरपतवार हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, यानी जिनमें जो हमारे काम का नहीं है, पर ऐसे जो पेड़ लगे होते हैं खेतों के किनारे पगडंडियों में, बगिया होती है उसकी बाउंड्री जो प्राकृतिक झाड़ियों से लगी होती है, वो तमाम झाड़ियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो झाड़ियां मनुष्यों के किसी काम की नहीं है वो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य उसी पर डिपेंडेंट है, यानी जो खेत के किनारे जो झाड़ी या पौधे लगे होते हैं उन्हीं में तितली, भंवरे और अन्य तरह के हजार कीड़े मकोड़े अपना घर बनाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को खा करके चिड़िया अपना पोषण प्राप्त करती है, वो कीड़े मकोड़े जो सड़े गले पेड़ होते हैं, पत्तियां होते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और ज्यादातर जो तितली होती है, भौरे होते हैं या अन्य तरह के जीव होते हैं वो पॉलिनेशन परागण का काम करते हैं। यानी बिना परागण के तो फूल से फल में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है कोई भी फसल या कोई भी सब्जी, उसके लिए भंवरों की, तितलियों की, अन्य तरह के वास्प की, मकोड़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने की वजह से हमने खेतों के किनारे जो प्राकृतिक रूप से परागण करने वाले जीव जंतुओं थे उनके होस्ट प्लांट्स को, उनके फूड प्लांट्स को हमने खत्म कर दिया
जी।
तो ये जो वैज्ञानिक या अत्याधुनिक तरीके हैं कृषि के, उन्होंने जो इकोसिस्टम है उसको 100% डैमेज किया। और जब भी उसके समाधान की बात आती है तो फिर उसमें कोई ना कोई नया केमिकल कुछ ज्यादा इंटेंसिटी वाला लॉन्च किया जाता है जो लॉन्ग टर्म में इंसानों को बीमारी ही देता है। तो हमें अपने आसपास की मिट्टी को, अपने आसपास की जलवायु को समझना बहुत जरूरी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो अगर हजार साल की परंपरा में किसी अनाज की खेती अगर हमारे यहाँ की मिट्टी में होती है तो वो आदर्श खेती होगी, बजाय हम किसी बाहरी प्रजाति के किसी बीज को लाकर अपने घर में उगाएं और उस पेड़ को बचाए रखने के लिए हम उसमें केमिकल का इस्तेमाल करें। इसलिए जैव विविधता को, अपनी स्थानीय जैव विविधता को जानना बहुत जरूरी है, तब हम अपने थाली में परोसे गए भोजन की क्वालिटी को समझ पाएंगे। जी
जी बिल्कुल जी, सही बात
जी। इसमें यही है कि अगर हम नदी की बात करते हैं तो एक नदी जब डिस्टर्ब होती है कहीं भी किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर उसके साथ साथ पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है
जी,
क्योंकि नदी का बहाव अपने साथ साथ बहुत सारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उन पे अपना योगदान करते हुए चलती रहती है। जो उनके जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर वाटर शेड की दृष्टि से अगर जिसको बोले भूजल को चार्ज करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है। और उसपे अगर हम जलीय जीव जंतुओं की बात करें या फिर तटवर्ती जो जीव जंतु हैं उनकी बात करें, आसपास लगे हुए पेड़ पौधे की प्रजातियों की बात करें, तो नदी एक तरह से इन सबका ख्याल रख कर चलती है, इसलिए ही नदी को जीवनदायिनी भी कहा जाता है। इस वर्ष का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है ये पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन और उसके पुनर्जीवित करने के ही प्रयासों पर समर्पित है। तो यहाँ पर चाहे हमारी नदियाँ हो या जंगल हो, कहीं ना कहीं पर हमें पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को अगर इसको रिस्टोर करना है, इसको बचाना है, इसको संवर्धित करना है, तो इसके लिए बहुत बड़े प्रयासों की नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रयासों की आज जरूरत है। एक छोटे से गांव के स्तर पर, यहाँ तक कि हमारे घर, यहाँ तक कि हम स्वयं, तो हमारे प्रयास भी यहाँ पर मैटर करते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े स्तर पर सरकारी प्रयासों की बात करें तो जैव विविधता पे ही, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और इसके साथ साथ हमारे जो जैव विविधता अधिनियम के तहत भारत जो है वो उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव भौगोलिक वर्गीकरण किया जा चुका है। मतलब हमारे पास पूरे देश का एक ऐसा नक्शा तैयार है जहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम और अलग अलग तरह के वातावरण के अनुसार जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनकी एक तरह से कहना चाहिए कि पूरी इन्वेंट्री, पूरी वो सूचीबद्ध हो चुकी है, और उसके लिए अभी भी लगातार प्रयास जारी। और जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं कि हम सबसे पहले तो हमारे घर के आसपास अक्सर आजकल बंदर आ जाते हैं, दूसरे छत्तीसगढ़ में खासतौर पर हम सुनते रहते हैं कि हाथियों ने हमला किया, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं पर जीव जंतुओं के लिए उनके जो घर हैं, उनका जो इकोसिस्टम है, उनका पारिस्थितिक तंत्र है, उसको जिस तरह से विनष्ट किया गया है उसके कारण ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आ रही है। हमने उनका घर उजाड़ दिया, उनकी भोजन श्रृंखला पर इतनी चोट की है कि अब वो वापस हम पर भारी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो इस समय जरूरत है वो है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की, और इसमें मनुष्य की भूमिका ही सबसे बड़ी है। पानी, जंगल, जमीन, अभी जैसे संजय जी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पर हमने अपने ऐशो आराम और ठाट बाट से हम इतने डूबे हुए हैं कि हमें हमारा पर्यावरण लगातार संकेत दे रहा है लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे। तो ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं पे ये वार्निंग बेल है, ये हमें अब भी जाग जाना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि धरती जो है ये खतरे में है। इसका एकमात्र जो मुझे सोल्यूशन दिखता है कि जो स्मॉल एफर्ट, जो छोटे छोटे प्रयास है, छोटे जंगल लगाएं, जहाँ कहीं बंजर जमीन दिखती है वहाँ पेड़ उगाने की कोशिश करें, तो शायद कुछ हद तक। और जैसा अभी संजय जी कह रहे थे कि लोकल स्पीशीज को, जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
पेड़ और जंगल बचाने की बात, उन्हें संवर्धित संरक्षित करने की बात कही, पारिस्थितिक तंत्र की बात, और संजय जी ने भी पुरानी पीढ़ी जिस तरीके से नेचर फ्रेंडली लिविंग था उनका, वो एक बात जोड़ी जो व्यवसायिक प्रतिबद्धता से बहुत सारी चीजें डैमेज हुई है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हम एकदम शुरुआती तौर पर और मोटे तौर पर समझें, हालांकि हर पेड़ पौधा बहुत जरूरी है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, अधिकांश जगहों पर बहुत अर्नामेंटल पौधों का रोपण होता है ताकि जल्दी बढ़ जाए, जल्दी सुंदरता दिख जाए। इस तरीके से एक अप्रोच लोगों की हो गई है। उससे बेहतर कौन से प्रजाति के पेड़ हैं, पौधे हैं, जिनको रोपने से शायद हम एक लॉन्ग टर्म में चीज़ों के या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं और जमीन की नमी पकड़ने के जिनकी ताकत जिन पेड़ों के वृक्षों की है, उस कैटेगरी से यदि हम लोगों को प्रेरित करें कि हाँ इन इन पेड़ों का सबसे पहले वृक्षारोपण होना चाहिए जो खत्म हो रहे हैं, वो सुझाव क्या देंगी आप?
मुझे तो लगता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें अपने स्थानीय प्रजातियों को ही प्रमोट करना चाहिए। जैसे जो हमारे स्थानीय जो फल हैं, जो स्थानीय सब्जियां हैं, जो मौसम के अनुसार हमें मिलती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भाजियां बहुत प्रचलित हैं, बहुत से ऐसे फल हैं जो किसी खास सीजन में आते हैं, जैसे तेंदू है, चार है। हमारी जो जीवन शैली है उससे हम जितनी स्थानीयता को अपनाएंगे, जितने स्थानीय पेड़ पौधों को प्रमोट करेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोकल स्पीशीज का ही अगर रोपण करते हैं। जैसे बारिश आने वाली है, देखिए पेड़ों की जो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उसके बीज जहाँ कहीं पे भी उन्हें जिंदगी का मौका मिलता है वो उगाते हैं। कहीं छोटे दरार में देख लीजिए, अगर कहीं उसे थोड़ी सी नमी मिल जाती है, थोड़ी कहीं से जद्दोजहद करके जिंदगी जीने का मौका मिलाता है तो वो बीज अंकुरित होकर उगाता है। तो ये जो चाहत है एक पेड़ की जिंदगी की तरफ, तो हमें बस इंसानी हाथों को थोड़ा सा खुद को एक सहायक की भूमिका में लाना है, ऐसी प्रजातियों को पहचानना है जो स्थानीय है और इसमें जो लोकल नॉलेज है, जो स्थानीय ज्ञान है गांव का, पूर्वजों का, इसे फिर से अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
मैं यहाँ पर कुछ पेड़ों का नाम लेना चाहूंगा।
जी जी जरूर।
कि हमारा जो सेंट्रल इंडिया है उसमें इतनी सारी नदियों के होने का एक बड़ा कारण भी जो है वो साल का फॉरेस्ट है। साल जिसे अपने स्थानीय भाषा में हम लोग सराई कहते हैं, तो सराई के पेड़ का प्लांटेशन थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो जहाँ पे भी साल का फॉरेस्ट लगा है, साल की एवरेज एज जो है वो 400 साल मानी जाती है, विकल्प वृक्ष के तौर पे माना जाता है। और ये प्राकृतिक बोरर का काम करता है, यानी बारिश में 3 महीने में जितना पानी बरस के जमीन के नीचे चला जाता है उसको साल भर साल फॉरेस्ट की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर लेके आती हैं। तो उसकी वजह से पानी नदियों में साल भर, हमारे यहाँ के मैकल पर्वत के अमरकंटक अचानक मार के नदी नालों में साल भर पानी रहता है। दूसरी चीज आम और जामुन, जहाँ पे भी आम, जामुन, गुलर, अर्जुन ये स्थानीय प्रजातियों के पेड़ है, ये जहाँ पे भी होंगे वहाँ का टेम्परेचर बाकी बाहर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री कम ही होता है। और इनके इन पेड़ों में बहुत पत्तियों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तो ये पत्तियां बाकी पेड़ों की तुलना में ज्यादा समय तक प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो जल की जो उपलब्धता है जमीन से खींचने की वो ज्यादा बनी रहती है जहाँ पे आम, जामुन और गुलर लगा होता है। और बरगद, पीपल और गुलर और फिकस फैमिली कहलाती है, जिसमें यानी एक अंजीर प्रजाति के जो गुलर या पीपल के फल होते हैं, उस प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं उसके उन पेड़ों पे 30 से 35 प्रकार के पक्षी जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ऐसे पेड़ों से। तो बरगद और पीपल की तो यूं ही रिस्पेक्ट है, धर्म से ही जोड़ा गया था हमारे यहाँ, क्योंकि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ही था जिस तरीके से हम फसलों का त्योहार मनाते आए थे। तो धर्म में बाद में चीजें जुड़ी, दरअसल फसलों का ही उत्सव था कि जब सबसे ज्यादा अन्न या फल हमको मिलते थे उस मौसम को हम लोग सेलिब्रेट करते थे, साल में 3-4 बार जब भी फलों का सीजन आता था। तो अगर हम लोग बरगद, पीपल, गुलर, आम, जामुन, नीम, तुलसी, कैथा, इस तरह के स्थानीय देसी पेड़ों को लगाएंगे तो हमें और दूसरे किस्म के प्लांटेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पेड़ जंगलों में दुर्लभ हैं वहां तक चिड़िया उड़ के जाएगी। अगर बरगद, पीपल और गुलर से ही चिड़ियों को भोजन मिलता रहेगा और चिड़िया जीवित रहेंगी तो चिड़िया दूसरे जो दुर्लभ फल होते हैं उनको खाएंगी और उनके बीजों का डिस्पर्शन करेंगी, छिड़काव करेंगी। तो पेड़ लगाने के लिए वैसे भी प्रकृति ने या ईश्वर ने मनुष्यों को जिम्मेदारी नहीं दी थी, वो जानवरों को जिम्मेदारी दी थी। तो जितने भी जानवर जिस पेड़ का फल खाते हैं उनके वेस्ट से एक तरीके से कहा जाए सीड डिस्पर्शन होता है और उनके शरीर के थ्रू ही उस बीज की सीजनिंग होती है। तो वो चिड़िया खुद ही पेड़ लगाने का काम करते हैं। तो अगर हम एक बरगद या पीपल को कटने से बचा रहे हैं तो दरअसल हम हजारों पेड़ को उस साल उगने दे रहे हैं, क्योंकि बरगद पीपल या गूलर के पेड़ में जो चिड़िया बचेंगी या जिन चिड़ियों की नेस्टिंग होगी वो चिड़िया एक सीजन में मान के चलिए कि हजारों पेड़ हजारों बीजों का छिड़काव करेंगी। तो जहां तक संभव हो गूलर के पीपल के बरगद के आम जामुन नीम के जाम अमरूद के पेड़ ये सारी पेड़ जो होते हैं जिनके बीजों को बाजार से नहीं खरीदना पड़ता। किसी भी देसी प्रजाति का सिंपल सा उदाहरण ये है कि जिसके बीज को हर साल ना खरीदना पड़े जो पेड़ स्वयं बीज देता हो ऐसे सभी पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। और जो भी जिन्हें हम ऑर्नामेंटल ट्रीज कहते हैं वो दरअसल इन्वेसिव स्पीसीज होती है, यानी एक तरीके के बेशर्म प्रजाति के पेड़ होते हैं और इसीलिए उनको नॉर्थ से उठा के साउथ में लगा दिया जाता है, साउथ से लगा के ईस्ट में लगा दिया जाता है, ईस्ट से वेस्ट में। वो एक ऐसी प्रजातियां हैं जो लगा देने के बाद जो लोकल प्रजाति होती है उनको नुकसान पहुंचाती है। तो हमें किसी भी कॉलोनी में किसी भी बगीचे या गार्डन में मोनोकल्चर से बचना चाहिए, यानी एक ही तरह के पेड़ लगाने से हमेशा बचना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कीड़ा आता है जो एक पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है और हजार पेड़ उस कैंपस में लगे हैं तो एक पेड़ से हजार पेड़ तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर पेड़ों के बीच में डिफरेंस है तो कोई आम को जो कीड़ा नुकसान पहुंचाता है वो जामुन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो जामुन को पहुंचाता है वो साल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो साल को पहुंचाता है वो बरगद पीपल को नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरीके से विविधता होने से कभी भी कोई अगर बीमारी भी आती है जंगलों में वो भी पूरी तरीके से पूरे जंगल को खत्म नहीं करती। और हमारे यहाँ जैसा अभी हम कोरोना में भी कह रहे थे कि चेन टूटनी चाहिए, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि कोई भी एक तरह की चीज जंगल में नहीं होनी चाहिए, उसके बीच बीच में छोटी छोटी झाड़ियां होनी चाहिए, छोटे छोटे घास होने चाहिए। दीमक भी इम्पोर्टेंट है जो बड़े सड़े पेड़ को मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम करता है। घरों में मच्छरों का होना भी जरूरी है, वो छिपकलियों को भोजन प्रदान करता है, मकड़ियों के लिए भोजन का काम करता है, मकड़ियां मच्छरों की जनसंख्या को कंट्रोल करती हैं। तो सारे जीव जंतु एक तरीके से इस पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको बैलेंस करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मच्छरों का समाप्त हो जाना भी प्रॉब्लमेटिक है, ये समझने की जरूरत है। जब इस लेवल की सेंसिटिविटी बच्चों में स्टूडेंट्स में या बड़ों में आएगी घर में मकड़ी छिपकली इन सब चीजों का होना जरूरी है, तब मुझे लगता है जाकर हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन को समझ पाएंगे। क्योंकि हमें
बहुत सही संजय जी, मैं बिल्कुल इसमें मैं एक छोटी सी बात और भी जोड़ना चाहती हूँ।
हाँ,
अभी चमगादड़ को लेकर के क्योंकि कोविड पीरियड में हमने कई तरह की बातें सुनी कि उसकी वजह से कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है, लेकिन चमगादड़ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि करीब 500 पेड़ पौधों को उगाने के लिए चमगादड़ विशेष भूमिका निभाते हैं। मतलब अभी जैसे सीड डिस्पर्सल की बात हो रही थी, अभी संजय जी ने कहा कि एक पेड़ जो है इससे हजारों पेड़ बन सकते हैं अगर हम एक पेड़ कटने से बचाएं, क्योंकि उसके रहने वाले जीव जंतु जो है वो बीजों को फैलाने और जो उसका जो नेचुरल रीजनरेशन प्राकृतिक पुनरुत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा जीव भी एक विशेष भूमिका निभा सकता है। और एक यहाँ पर विशेष बात और भी है कि अगर स्थानीय प्रजातियां जैसे बरगद है पीपल है ये इस वातावरण में अगर उगाई जाती हैं तो ये अन्य तरह के पेड़ पौधों की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अडॉप्टेशन है साइंटिफिकली वो इस तरह के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए जो उनमें अडॉप्टेबिलिटी है वो उनको प्रमोट करती है। तो बहुत तेजी से वो बढ़ती है और अपने साथ साथ पूरे के पूरे एक पारिस्थितिक तंत्र को पोषित करते चलते, ये भी एक नोन फैक्ट है। वैज्ञानिकों ने उसको प्रमाणित किया है कि जो फाइकस प्रजाति है बरगद पीपल और गुलर उस पर सबसे ज्यादा बर्ड टिश्यूज आते हैं। तो अभी संजय जी ने इतनी खूबसूरती से कहा, मुझे ये बात बहुत बहुत प्रभावित हुई है संजय जी आपकी बात से कि एक पेड़ कटने से बचाकर आप हजारों पेड़ लगा लेते हैं।
क्या बात है। तो इसी नोट पर कि एक पेड़ कटने से बचा लेते हैं तो हजारों पेड़ का जो रिप्रोड्यूसिंग है या वो सारी चीजें हैं वो अपने आप होगी, और प्राकृतिक रूप से हम चीजों को बढ़ने दें, उन्हें संवर्धित होने दें। ये एक विशेष नोट के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करना चाहेंगे, और कुल जमा बात हमारे हिस्से यही आई कि वाकई हम प्रकृति का ऐसा संरक्षण करें जिसमें हम हरियाली का उत्सव मना सके, नमी का उत्सव मना सके, चिड़िया की उड़ान, उसके चुगने की ताकत को और उसकी खूबसूरती को समझ सकें, कीट पतंगे को समझ सकें। साथ ही साथ हमारे एक मित्र के नाटक की बात मुझे याद आ रही है कि उनका एक नाटक था कि धरती को बुखार है, तो वाकई कि धरती को हम बीमार ना होने दें, यदि इसका ताप बढ़ा तो वो इस तरह से बुखार में आ जाएगी कि वो हम सब के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो आइए हम सब मिलकर के डॉक्टर गरिमा तिवारी और संजय प्यासी जी की बात को आत्मसात करते हैं सभी सुनने वाले, और इस ओर अग्रसर हो जाएं कि वाकई हमें प्रकृति की, पर्यावरण की और बहुत बहुत छोटे छोटे कीट पतंगों की भी रक्षा सुरक्षा करनी है। डॉक्टर गरिमा तिवारी और संजय प्यासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अर्पा रेडियो के लिए इतनी ज़रूरी बात करने के लिए आपने समय निकाला।
जैव विविधता पर ये विशेष परिचर्चा अभी आपने सुनी अर्पा रेडियो पर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में वानिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गरिमा तिवारी और बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में फील्ड पर लगातार काम कर रहे श्री संजय बयासी हमारे आज के विशेष अतिथि थे। इस परिचर्चा का संचालन किया सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।